जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
राधा माधव
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय यशोदनन्दन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदनन्दन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमदीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री गौरताई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। शिल पुरुषोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरियस द सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस द सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस द सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज कुछ विशेष दिन है। आज कुछ विशेष दिन आविर्भाव तिथि पुरुषोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव है। तो पहले से किसी को पता नहीं, मैंने अभी बोला ना जयकारा तब पता चला कुछ। मैंने अभी जयकारा में बोला है तो पहले से मालूम नहीं। हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है, इस कौन के वैष्णव कैलेंडर में आज लिखा हुआ है। और ये आपका काम है देखना जानना। आज विशेष दिन है।
सुबह में देख लिया था।
तो आप लोगों में से, अरे बोल, आप लोगों में से केवल एक ही धर्म सिंधु हैं जो कि धर्म पर चल रहे हैं। आवाज आ रही? आवाज मेरी साफ आ रही? नहीं आ रही? हरे कृष्णा। आवाज साफ नहीं आ रही? हरे कृष्णा। अभी आ रही? नहीं, अभी आवाज साफ नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अभी आ रही है? हैं? अच्छा, तो पुरुष लोग इधर आ जाइए। हरे कृष्णा। यहाँ से आ रही आवाज? अच्छा,
मुझे उसका आइडिया नहीं।
तो मैं ये चर्चा कर रहा था, आज का कुछ विशेष दिन है, हैं? तो आपने सुना, आपको पता चला आज विशेष दिन है कुछ है? क्या? हाँ, क्या है आज विशेष दिन? क्या है विशेष दिन? विशेष दिन क्या है? नहीं सुना? तो इधर आओ ना, उधर से सुन। उधर सुनाई नहीं पड़ रहा है तो इधर आओ, थोड़ा और जगह बना दीजिए। आज कुछ विशेष दिन है। क्या है विशेष दिन? हाँ, क्या है विशेष दिन? क्या है विशेष दिन? क्या है विशेष दिन? कौन बताएगा? इधर किसका? पुरुषोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है आज। हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है ना। आप लोगों से कितने के पास वैष्णव कैलेंडर है? बहुत कम लोगों के पास वैष्णव कैलेंडर है। वैष्णव कैलेंडर जो इस कौन से जुड़े हुए हैं उनको लेना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि लें, मांगें। जैसे, हाँ, क्या है, कुछ कहना है? अभी भी आवाज नहीं आ रही साफ। आवाज साफ नहीं आ रही? हैं? आवाज फटी फटी आ रही?
तो नहीं है, क्योंकि जो दूसरा वाला स्पीकर है उसकी बैटरी डाउन है।
प्रभु जी बगैर स्पीकर के आप बोलिए तो अच्छा ज्यादा क्लियर आएगा, समझ आएगा, इसे कुछ समझ नहीं आ
रहा। इसको अलग कर दें।
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
तो फिर और आगे आ जाओ।
थोड़ा दूर से।
हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है? अच्छा, तो आज विशेष दिन है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु के ये संगी हैं। ब्रज लीला में जो कृष्ण बलराम के 12 सखा थे, जिनको कहते हैं द्वादश गोपाल, जो विशेष संगी थे कृष्ण बलराम के, कितने थे वे? 12 थे, द्वादश गोपाल। वे चैतन्य लीला में भी चैतन्य महाप्रभु के संगी बने। तो एक लिस्ट है जिसमें ये बताया गया है कि जो ब्रज लीला में कृष्ण के संगी थे, वे गौर लीला में कृष्ण के कौन से संगी बने, तो इसमें नाम बताया गया है। पहले श्री दामा सखा, 12 गोपालों में से श्री दामा सखा ब्रज लीला में जो थे, वो गौर लीला में हुए अभिराम गोपाल, चैतन्य महाप्रभु के संगी। दूसरे सुदामा सखा जो ब्रज लीला में थे, वो गौर लीला में हुए सुंदरानंद। तीसरे महाबल नाम के सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में हुए कमलाकर पिप्पलाई। चौथे सुबल सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में हुए गौरीदास पंडित। पांचवें अर्जुन सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में हुए परमेश्वर दास। छठे वसुदामा सखा कौन सी लीला में? ब्रज लीला में, तो गौर लीला में हुए धनंजय पंडित। फिर सातवें महाबाहु सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में हुए महेश पंडित। आठवें स्तोक कृष्ण सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में हुए पुरुषोत्तम दास ठाकुर। और नवें लवंग सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में हुए काला कृष्णदास। दसवें दामा सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में हुए पुरुषोत्तम नागर। और ग्यारहवें सुबाहु सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में हुए उद्धारण दत्त। बारहवें कुसुमासव सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में हुए श्रीधर खोल बेचा। तो इस प्रकार से जो 12 गोपाल ब्रज लीला में थे, कृष्ण बलराम के संगी थे, वही चैतन्य और नित्यानंद के संगी हुए गौर लीला में, अलग अलग नामों से, है ना। उनमें से 12 गोपालों में से एक कौन से सखा हैं ब्रज लीला में, जिनका आज आविर्भाव है? आठवें क्या है? स्तोक कृष्ण। स्तोक का मतलब छोटा, छोटा कृष्ण, लिटिल कृष्णा। स्तोक कृष्ण, ये सखा कृष्ण से छोटी अवस्था के हैं और हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, कृष्ण के पीछे पीछे चलते हैं, तो इनको स्तोक कृष्ण कहा जाता है, है ना। तो यही आज गौर लीला में इनका आविर्भाव हुआ है, किस नाम से? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। तो इनके विषय में कुछ बातें इसमें लिखिए, गौड़ी वैष्णव चरितामृत में से, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पुरुषोत्तम दास निरंतर नित्यानंद प्रभु के स्मरण और सेवा में निमग्न रहते थे। इनके पुत्र थे कनु ठाकुर।
इतने उन्नत भक्त थे कि श्री कृष्ण उनके देह में सदैव निवास करते थे। जब कनु 5 वर्ष के थे, माता जाह्नवा इन्हें वृंदावन ले गई। माता जाह्नवा नित्यानंद की पत्नी, नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी, 5 वर्ष के बालक कनु को कहाँ ले गई? वृंदावन ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि इनकी जो माता थी, यानी पुरुषोत्तम दास ठाकुर की पत्नी थी जाह्नवा, उसका भी नाम जाह्नवा था, तो बालक को छोड़ करके, शरीर छोड़ करके चली गई। तो माता जाह्नवा जो नित्यानंद की पत्नी थी, उन्होंने इस बालक को जो है वृंदावन की यात्रा कराई, 5 वर्ष का बालक है ना। क्योंकि 5 वर्ष का बालक अपनी माता को कैसे छोड़ सकता है, लेकिन चूंकि माता शरीर छोड़ चुकी है और माता का भी नाम जाह्नवा देवी था और नित्यानंद प्रभु की भी पत्नी का नाम जाह्नवा देवी था है ना, तो ये मतलब नित्यानंद प्रभु के सखा पुरुषोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के सखा हैं, तो नित्यानंद प्रभु की पत्नी का भी नाम जाह्नवा देवी और पुरुषोत्तम दास ठाकुर की पत्नी का भी नाम जाह्नवा देवी है ना। तो एक माता जाह्नवा ने शरीर छोड़ दिया तो दूसरी माता जाह्नवा ने इस बालक का पालन पोषण किया है ना। ये इनकी विशुद्ध भक्ति देखते हुए गोस्वामियों ने हृदय से इनका अभिवादन किया। गोलोक वृंदावन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर द्वादश गोपालों में से एक ग्वाल बालक हैं। इनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। तो चूंकि आज कृष्ण बलराम के जो एक सखा थे उनका गौर लीला में आविर्भाव हुआ, तो हमने विचार किया कि चूंकि गौर पूर्णिमा भी निकट आ रही है, तो हम सुनेंगे कुछ ऐसी लीला जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के कुछ विशेष संबंध में है। चैतन्य और नित्यानंद के बीच में कुछ विशेष प्रेम की जो लीला है उसको हम सुनेंगे, तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। ये चैतन्य भागवत का मध्य खंड है और 11वां अध्याय है, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हे गौरांग, हे प्रेम सिंधु, हे अनाथों के नाथ, हे प्रभु, हे पतितों के बंधु, हे विश्वंभर, जय हो जय हो आपकी और आपके चरण कमलों के समस्त भक्तों की जय हो। स्वरूप दामोदर के प्राणधन गौरांग की जय हो। श्री रूप सनातन के प्रिय प्रभु की जय हो। श्री जगदीश गोपीनाथ के हृदय गौरांग की जय हो। इस प्रकार नवद्वीप में विश्वंभर प्रभु क्रीड़ा करते हैं, परंतु सब लोग उसे नहीं देख पाते, केवल भक्त ही देख पाते उनकी लीलाएं, सामान्य लोग नहीं देख पाते। श्रीवास पंडित ने निष्कपट भाव से प्रभु की सेवा की है, अतएव परिवार सहित प्रभु की लीलाओं का दर्शन करते हैं। कौन करते हैं? श्रीवास पंडित। श्रीवास के घर में ही नित्यानंद निवास करते हैं। एक सन्यासी हैं, इनका तो कोई घर नहीं है, तो श्रीवास पंडित ने अपने घर में रख लिया है। श्रीवास को पिता कहकर स्नेह करते हैं। कौन स्नेह करते हैं? नित्यानंद प्रभु श्रीवास को पिता कहकर स्नेह करते हैं, और नित्यानंद दिन रात बाल्य भाव के आवेश में रहते हैं, उनको बाहरी ज्ञान नहीं रहता, बालक के भाव में रहते हैं नित्यानंद। जबकि नित्यानंद प्रभु की अवस्था इस समय 32 साल है, लेकिन बालक के भाव में रहते हैं और बार बार श्रीवास की पत्नी मालिनी का स्तन पीते हैं, बालक भाव में स्तन पीते हैं। यद्यपि मालिनी के स्तन में लेस मात्र भी दूध नहीं होता, तथापि नित्यानंद के स्पर्श मात्र से दूध भर आता है, उनके अचिंत प्रभाव को मालिनी सब देखती है कि देखो नित्यानंद प्रभु दूध पीना चाहते तो उनके स्तनों से दूध निकलता है, परंतु किसी से बताती नहीं है। कौन नहीं बताती? मालिनी। किसी से बताती नहीं है क्योंकि प्रभु विश्वंभर ने मना कर रखा है कि किसी को नहीं बताना, जो भक्त नहीं है उनको नहीं पता होना चाहिए। नित्यानंद जी को सदा शिशु रूप में देखती हैं। निष्कपट प्रभु रे से वीरश्री निवास गोष्ठी संगे देखे प्रभु रे परकाश श्रीवासे रे घरे नित्यानंद बसती बाप बलि श्रीवासे रे करे प्रीति आहर से बाले भावे बाहे नाए जाने निरवधि मालनी रे कर स्थान पाने कभू नाहे दुग्ध पारा सीले मात्र है ये सब अचंद शक्ति मालिनी देखे चैतन्य रे निवारण कार्य न कहे निरवधि शिशु रूप मालिनी देखे। एक दिन प्रभु विश्वंभर बोले, विश्वंभर मतलब कौन?
चैतन्य
महाप्रभु। एक दिन प्रभु विश्वंभर बोले, है ना, सुनो नित्यानंद, अब नित्यानंद से बोले तो इसका मतलब विश्वंभर प्रभु कहां पर हैं?
श्रीवास
पंडित के घर में हैं। सुनो नित्यानंद, आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये कहा। विश्वंभर प्रभु ने नित्यानंद से कहा, आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना और श्रीवास के घर पर भी चंचलता नहीं करना, उन्होंने कहा। यह सुनकर नित्यानंद श्री विष्णु स्मरण करने लगे। उन्होंने कहा, आप मुझ में कभी चंचलता नहीं पाओगे। नित्यानंद बोले, आप अपने जैसा किसी को मत समझो। वो दोष चैतन्य महाप्रभु पर डाल दिया, इतना आपके अंदर ही दोष है जो मुझे बोलते हो। नित्यानंद बोले, विश्वंभर देव बोले, मैं तुम अच्छी तरह जानता हूं। नित्यानंद बोले, तो बताओ मेरे दोस्त, सुनू मैं? गौरचंद हंसकर बोले, तुम्हारा क्या दोष? दोष यही है कि सारे घर भर में तुम अन्न फैला देते हो, बच्चे के भाव में रहते हैं तो फैला देते हैं भोजन। नित्यानंद बोले, ऐसा तो पागल किया करते हैं, अच्छा इसी बहाने आप मुझे अपने घर में भात नहीं खिलाओगे? इस बहाने आप मुझे अपने घर में भात नहीं खिलाओगे कि मैं घर में फैलाता हूँ? तो आपको एक बहाना मिल गया कि मुझे भोजन ना कराने का एक बहाना मिल गया कि मैं जो है भात फैलाता हूँ, है ना। चंचल ताना करी बा श्रीवासे रे घरे सोनी नित्यानंद विष्णु स्मरण करे हमारे चंचल तुम्हें काबू ना पाईबा आप नारे मत तुम्हें करो ना बासीवा। विश्वंभर बोले, आमी तो माँ भले जानी। नित्यानंद बोले, दोष का देखे सुनी। हसी बोले, गौर चंद्र की दोष है तुम्हार सब करे अन्न वृष्टि करे अवतार। नित्यानंद बोले, यह पागल से करे इच्छा लाए घरे भात ना दीवे हमारे। अच्छा हाँ, मत खिलाओ मुझे, मत खिलाओ मुझे, आप अकेले ही मोर से खाओ, लेकिन अपने इस अपयश को क्यों करते फिरते हो? नित्यानंद बोले, अगर नहीं खिलाना तो ना खिलाओ, अपना ही अपयश सुनाते फिरते हो। अर्थात नित्यानंद घर भर में अन्न फैला देता है, ऐसा कहने से मुझे कोई अन्न नहीं खिलाएगा, इसमें आपका ही तो, आपकी ही तो बदनामी होगी। नित्यानंद कह रहे हैं, ऐसा सबको बताओगे तो आपकी ही बदनामी होगी। तो प्रभु बोले, तुम्हारा अपयश तो मुझे लगता है, तुम चंचलता करते हो तो बदनामी तो मेरी होती है। भगवान बोले, इसीलिए मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूं। तब नित्यानंद हंसकर बोले, अच्छा बहुत अच्छा, चंचलता देखने पर सदैव शिक्षा देते रहना। नित्यानंद बोले, आपने ठीक ही कहा है, मैं तो चंचल हूँ। इतना कहकर प्रभु की ओर देखते हुए नित्यानंद खिलखिलाकर हंसे। आनंद में बाहर की कुछ सुध-बुध उन्हें ना रही और क्या कर रहे हैं, झट नग्न हो गए। अभी चंचलता शुरू कर दी, नग्न हो गए और वस्त्र को लेकर सिर पर लपेट लिया, सिर पर लपेट लिया। और दोनों पांवों को मिलाकर जोर से उछलने कूदने लगे, दोनों पैर मिला करके और चल रहे हैं, कूद रहे हैं दोनों पैर मिला करके, और झूमते हुए सारे आंगन में घूमने फिरने लगे। प्रभु बोले तुमार अब कीर्ति आमे पाई सहीता कारण आमे तुम्हारे से खाई। हसी बोले नित्यानंद बड़े भले भले चंचल देखिले सिखाई बा सर्व काल निश्चय बाली लुमी आमिता चंचल एते बाली प्रभु चाहे हसी खले खल। आनंद न जाने बाहे कर्म कौन करे दिगंबर हई वस्त्र बांधी ले न शिरे जोड़े जोड़े लाफ दे हसिया हसिया सकल अंगने बोले ढोलिया ढोलिया। अब श्रीवास और गदाधर और हरिदास ये तीनों हंसने लगे देख करके। तीन कौन कौन है? श्रीवास ठाकुर तो उनका घर ही है, और कौन है? हरिदास ठाकुर, गदाधर पंडित। तीनों हंसने लगे और कि बोले देखो प्रभु ने इनको चंचलता ना करने की शिक्षा दी, उसका फल ये हुआ कि वस्त्र ही उतार दिया, नग्न होकर के घूम रहे हैं। तब विश्वंभर प्रभु ने जोर से कहा तुम ये क्या कर रहे हो? गृहस्थों के घर में ऐसा करना धर्म नहीं है। अभी तो तुमने कहा था मैं क्या पागल हूं, अभी क्षण भर में अपनी सब बात मिटा दी और पागल बन गए। परंतु जिसे बाहर की कुछ खबर तक नहीं उसको किसी की बातों या ताना से शर्म कहाँ आती है, उनको कहाँ शर्म है। नित्यानंद तो आनंद सागर में बहे जा रहे हैं। प्रभु ने स्वयं उन्हें पकड़कर वस्त्र पहनाया, पकड़ करके कपड़ा पहनाया इनको। नित्यानंद का चरित्र ऐसा अचिंत है। नित्यानंद एक शेर के समान मतवाले हैं, चैतन्य के वचन अंकुश को मानते हैं और कुछ नहीं जानते। अपने हाथों उठाकर मुंह में भात भी नहीं खाते, अपने हाथ से नहीं खाते हैं, मालिनी पुत्र की भांति उनके मुख में खिलाती है तो खाएंगे, अपने हाथ से खाएंगे ही नहीं। जैसे बच्चा अपने हाथ से नहीं खाता ना माता खिलाती है, तो अपने हाथ से नहीं खाते। नित्यानंद के कार्य को पतिव्रता मालिनी देवी जानती हैं, और माता जैसे पुत्र की सेवा करती है उसी प्रकार नित्यानंद की सेवा करती हैं। आपाने तोली या हाथ है भात नाई खाए पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी जो गाय। नित्यानंद अनुभाव जाने पतिव्रता नित्यानंद सेवा करे जाने पुत्र माता। एक दिन पीतल की कटोरी को कौवा ले गया। क्या ले गया? कौवा। पीतल की कटोरी को कौवा ले गया और जिस डाल पर रहता था वहीं पर उड़ करके बैठ गया। थोड़ी देर में कौवा न जाने किधर चला गया, तब तो मालिनी के चित्त को बड़ी भारी चिंता हुई। वो कौवा कटोरी को कहीं छोड़कर फिर वहीं पर बैठ गया। कहां पर? डाल में बैठ गया। कटोरी कहां छोड़ के आ गया? मालिनी ने देखा उसकी चोंच में कुछ नहीं है। वो सोचने लगी कि ठाकुर पंडित का व्यवहार बड़ा कठोर है, वे तो श्री कृष्ण की घी की कटोरी है, वो कटोरी श्री कृष्ण के घी की है। वो चली गई, श्रीवास सुनेंगे तो गजब हो जाएगा। ऐसा सोचकर कुछ उपाय ना देखकर बेचारी मालिनी रोने लगी। उसी समय नित्यानंद आ पहुंचे और देखा मालिनी बिना बात के रो रही हैं। हंसकर नित्यानंद बोले क्यों रो रही हो, क्या दुख है, बोलो बताओ, मैं सब दूर कर दूंगा। मालिनी बोली श्रीपाद सुनो, श्री कृष्ण के घी की कटोरी को कौवा ना जाने कहाँ ले गया। नितन बोले माता चिंता छोड़ो, मैं ला दूंगा कटोरी, तुम रोना बंद करो। फिर प्रभु हंसकर कौवे से बोले अरे कौवे अभी ले आओ कटोरी यहां। नितन बोले अरे कौवे ले आओ कटोरी यहां। सबके हृदय में नित्यानंद जी का निवास है, फिर किसकी शक्ति है जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे। प्रभु की आज्ञा को सुनकर कौवा उड़ गया और दुखनी मालिनी कौवे की तरफ देखने लगी अब कहाँ चला गया। कौवा उड़कर थोड़ी देर में गायब हो गया और थोड़ी देर में कटोरी को मुख में लेकर वहीं आ गया। हरि बोल। उसने कटोरी को लाकर मालिनी के आंगन में छोड़ दिया। नित्यानंद के प्रभाव को मालिनी खूब जानती हैं। आज इस अपूर्व घटना को देखकर आनंद में मूर्छित सी हो गई और फिर उनकी स्तुति करने लगी। साभारे हृदय नित्यानंदे रे बसती, तारे आज्ञा लंघे वेक कहाँ रे सकती। सुनिया प्रभु रे आज्ञा काके उड़े जाए, शोक कुले मालिनी का के रे देगे चाय। छाने के ओढ़िया काक अदृश्य हाइल, बाटी मुख्य करी मो पुनः से खाने आयल। आनिया थोइले बाटी मालिनी रस्थाने, नित्यानंद प्रभाव मालिनी भाल जाने। आनंदे मूर्छिता हाइला अपूर्व देखिया, नित्यानंद प्रतिस्तुत करे दंडाइया। अब सुनिए स्तुति क्या है। मालिनी स्तुति कर रही है, जो गुरु के मृत पुत्र को ले आए, अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को ले आए। कब? पिछले जन्म में कृष्ण बलराम गुरु के मरे पुत्र को लाए थे ना? नहीं, एक साल पहले मर चुका था, उसको ले आए। तो जो गुरु के मृत पुत्र को ले आए, और यमराज के घर से भी मरे पुत्र को ला सकते हैं, वे कौवे से कटोरी ले आए, तो कौन सी बड़ी बात है। जिन्होंने अपने शीश पर अनंत भवन अनायास धारण कर रखे हैं, कौन? शेष की शेष के रूप में नितान बहु अपने सिर पर आनंद भवन अनायास ही धारण कर रखे हैं, उनका भार भी नहीं जानते। हाँ, और जिनके नाम मात्र से अविद्या ध्वंस हो जाती है, उनके लिए कौवे से कटोरी मंगवा लेना कौन सी बड़ी बात है। आप पूर्व काल में लक्ष्मण रूप से वनवास के समय सीता जी के निकट रक्षक बनकर रहे। आपने सीता जी के केवल चरणों को छोड़कर और उनको देखा ही नहीं है। आपके बाणों से रावण का वंश विध्वंस हुआ, वहीं आप कटोरी ले आए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कालिंदी जी ने जिनके चरणों में आकर के स्तुति की, जमुना जी ने, है ना, और 14 भवनों का पालन करने की जिनकी सामर्थ्य है, उनके लिए कौवे से कटोरी मंगवा लेना कौन सी बड़ी बात है। तथापि आपका कोई भी कर्म छोटा नहीं है, आप जो कुछ करते हैं वही सत्य है, चारों वेद यही कहते हैं। जे जाने आने लमृत गुरु रे नंदन, जे जाने पालन करे सकल भुवन। या मेरे घरे ते हैते जे जानिते पारे, काक स्थाने बाटी आने की महत्व तारे। जहारे मस्तक पोर आनंद भुवन, लीलाए न जाने भार करे पालन। आनादि अविद्या ध्वंस हाय जार नामे, की महत्व तारे बाटी आने काक स्थाने। जे तुम्हें लक्ष्मण रूपे पूर्वे वने वासे, नेरवधि रक्षा के आछीला सीता पासे। तथापि यह मात्र तुम्हें सीता रे चरण, यह वही सीता नाही देखी लेके मन। तुम्हारे से बाणे रावणे रे बंसे नासे, से तुम्हें जे वाटी आन के मने प्रकाश है। जहारे चरण पूर्व कालिंदी आसिया, स्तवन कर ले मां प्रभाव देखिया। चतुर्दश भुवन पालन शक्ति जार, काक स्थाने बाटी आने के महत्व तार। तथापि तो मार कर्म अल्प नहीं आए, जे कर से सत्यचारी वेद कहे। किसने कहा? मालिनी ने कहा। नित्यानंद मालिनी की स्थिति सुनकर हंसे और बाल्य भाव में बोले, मैं भोजन करूंगा। उन्होंने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया कि क्या बोल रही है, जैसे बच्चा होता है ना, मुझे भोजन करना है। नित्यानंद को देखने पर उसके स्तन बहने लगे और बाल भाव में नित्यानंद उसका स्तन पीने लगे। इस प्रकार नित्यानंद के चरित्र अचिंत हैं, जगत में प्रसिद्ध हैं। आप ऐसे दुर्विज्ञेय कर्म करते हैं, अलौकिक कर्म करते हैं, जो उनके तत्व को जानते हैं वे उनको सत्य मानते हैं। नित्यानंद दिन रात परम उन्मत्त बने नदिया में घूमते रहते हैं। नदिया शहर है, नदिया में घूमते रहते हैं। नित्यानंद को योगी भक्त ज्ञानी जिसकी जो इच्छा है क्यों ना कहे, वे सब कुछ हैं। चैतन्य चंद्र के नित्यानंद जो कुछ भी क्यों ना हो, तथापि उनके चरण धन मेरे हृदय में निवास करें। इतना विनम्र आग्रह करने पर भी जो पापी उनकी निंदा करता है, उसके माथे पर मैं लात मारूंगा। क्या मारूंगा? लात मारूंगा। किसके माथे पर? जो नित्यानंद की निंदा करता है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु श्रीवास के घर में वास करते थे और स्वयं गौरांग प्रभु उनकी निरंतर रक्षा करते थे। जैसे कि चैतन्य नित्यानंद नए तब उसे चरण धन रहो कह हृदय इते परिहरे ओ जे पापी निंदा करे तबेला थी मारो तार सेरे रे ऊपरे हे मत आजे प्रभु श्रीवासे रे घरे निरवधि अपने गौरांग रक्षा करे। एक दिन प्रभु विश्वंभर अपने घर में कौन विश्वंभर प्रभु अपने घर में लक्ष्मी जी के साथ परम सुंदर रूप में विराजमान है। उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया है, उनके साथ में विराजमान है। परम हर्ष के साथ लक्ष्मी जी तांबूल अर्पण कर रही हैं और प्रभु के आनंद में वे दिन रात सब भूल जाती हैं। जिस समय विश्वंभर प्रभु लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं उस समय सची माता के हृदय में बड़ा आनंद होता है। माता देखती है लक्ष्मी नारायण का दर्शन करती है, माता को बहुत आनंद आता है। प्रभु भी माता के चित्त की सुख की बात जानकर लक्ष्मी जी के साथ बैठे रहते हैं। ऐसे समय पर एक दिन आनंद में बेहवल परम चंचल नित्यानंद प्रभु के घर में आ गए। वो तो बहुत चंचल है नित्यानंद है? तो आ गए, कहाँ से आ गए? श्रीवास के घर से आ गए, इनके घर में आ गए। आकर बाल्य भाव में नग्न होकर खड़े हो गए नग्न होकर खड़े हो गए। प्रेम अभेश में चूर हैं, किसी के लज्जा शर्म नहीं है, उनको लज्जा शर्म नहीं है। ये देख प्रभु बोले नित्यानंद नग्न कैसे हो? नित्यानंद उत्तर दिया हाँ हाँ उन्होंने पूछा नग्न कैसे हो? हाँ हाँ प्रभु बोले नित्यानंद वस्त्र पहनो। नित्यानंद बोले आज मैं जाऊंगा प्रभु बोले नित्यानंद ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वे बोले अब और नहीं खा सकता हूं प्रभु बोले एक बात छोड़ दूसरी बात क्यों करते हो? तो वे बोले मैं 10 बार गया था तब प्रभु क्रोधित होकर बोले मेरा दोष नहीं है। तो नित्यानंद बोले यहां मां नहीं है फिर प्रभु बोले कृपा कर वस्त्र तो पहनो। तो वो बोले मैं भोजन करूंगा इस प्रकार नित्यानंद श्री चैतन्य के भाव में मतवाले बने हुए हैं, सुनते कुछ और कहते कुछ हा? और हंसते फिरते हैं। तब प्रभु ने उठकर स्वयं उनको वस्त्र पहनाया, भगवान ने स्वयं वस्त्र पहनाया परंतु नित्यानंद को बाहरी ज्ञान कहाँ है, वे तो हंसते जा रहे हैं। अब वस्त्र पहना दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, वस्त्र नहीं पहने तो भी कुछ बस फर्क नहीं, कुछ फर्क ही नहीं है प्रभु का है कृपा करी पारा है बासन, नित्यानंद बोले आमी करी वे भोजन। चैतन्य रे भावे मत नित्यानंद राय, एक सुन आर कहे हासिया बेड़ाए। अपने उठिया प्रभु पाराए बासन, बाहे नाही हासे पद्मावती रे नंदन। नित्यानंद चरित्र देखिया आए हासे, विश्व रूप पुत्र हे न मने मने बासे। नित्यानंद के चरित्र को देखकर सची माता हंसती और मने मन उनको विश्व रूप जैसा पुत्र की भांति मानती। उनका बड़ा पुत्र विश्वरूप ने संन्यास ले लिया है और जब से गया वापस आए नहीं, सन्यासी वापस आता नहीं। एक दूसरा सन्यासी उनके घर में आ गया है तो उसको विश्वरूप मानते हैं कि ये मेरा विश्वरूप है। उसी विश्वरूप जैसे वचन इनके मुख से भी सुनती और बीच बीच में उसी का रूप भी सची माँ देख पाती हैं विश्वरूप। तो वो भी बलदेव तत्व ही हैं, विश्वरूप और नित्यानंद दोनों बलदेव तत्व हैं। सची माता किसी से नहीं कहती, पुत्र जैसा उन पर स्नेह करती और वे स्नेह भी नित्यानंद और विश्वंभर पर समान होता था माता का, जैसे यशोदा माता का कृष्ण बलराम में बराबर स्नेह। थोड़ी देर बाद बाहरी शुद्ध आने पर नित्यानंद ने वस्त्र पहने फिर सची माँ ने संदेश लाकर खाने को दिए। क्या दिया? संदेश दिए। माता से छेना से बने 5 संदेशों को पाकर नित्यानंद ने एक तो खा लिया और 4 को फेंक कर बिखेर दिया। माता बोली हाय हाय ये तुमने क्यों फेंक दिए? तो नित्यानंद बोले तुमने इकट्ठे इतने क्यों दे दिए? एक बच्चे को जो है एक एक दो दो एक एक खाएगा ना, इकट्ठे क्यों दे दिए। माता बोली और तो है नहीं, अब क्या खाओगे? तो वे बोले देखो अवश्य और होंगे। नित्यानंद बोले, माता ने भीतर जाकर देखा कि चारों संदेश भीतर रखे हैं। हरि बोल, हरि बोल। माता बोली अरे वे संदेश ना जाने कहाँ जाकर पड़े थे, घर के भीतर कौन से रास्ते से आ गए। ये देखकर वो बड़ी प्रसन्न हुई और उन संदेशों को उठाकर झाड़ पहुंच के ले आई। अगर क्या देखती है, नित्यानंद उन्हें फेंके हुए संदेशों को खा रहे हैं। अब चार यहां पर भी आ गए। माता ने पूछा बेटा ये कहां से आ गए। नित्यानंद बोले वही तो हैं जो मैंने फेंक दिए थे, तुमको दुखी देकर मैं उनको उठा लाया। ये आश्चर्य देखकर माता मन ही मन सोचती है कि नित्यानंद की महिमा कोई नहीं जानता है। माता बोली नित्यानंद तुम मुझे क्यों भुलाते हो, मैं जान गई तुम ईश्वर हो, अब मेरे आगे माया मत चलाओ। नित्यानंद बाल भाव में माता के चरण पकड़ने को दौड़े तो माता भाग गई। नित्यानंद बोले जहां छड़ाई फैली लू तोरे दुख देखी ताई चाहिया आनी लू, अद्भुत देखिया आई माने माने गणे, नित्यानंद महिमा न जाने कौन जाने, आई बोले नित्यानंद केने मोरे भाड़, जानी ले ईश्वर तुम्हें मोरे माया छाण, बाल भावे नित्यानंद आई रे चरण, धरी बारे जाए आई करे पलायन। इस प्रकार नित्यानंद के चरित्र अगाध हैं, जो पुण्यात्माओं के लिए शुभकारी हैं और दुष्टों के लिए बाधाकारी हैं। जो पापी नित्यानंद की निंदा करते हैं गंगा जी भी उन्हें देखकर भाग जाती हैं। जो पापी नित्यानंद की निंदा करते हैं गंगा जी भी उन्हें देख करके भाग जाती हैं। नित्यानंद महाप्रभु वैष्णवों के राजा हैं, अनंत देव हैं, ईश्वर हैं, शेष हैं। नित्यानंद श्री चैतन्य के जो कुछ भी क्यों ना हो, मेरे लिए तो उनके चरण ही परम धन है, वही चरण मेरे हृदय में सदा निवास करें। सब वैष्णवों के चरणों में भी मेरी यही मनोकामना है कि नित्यानंद मेरे प्रभु हो, श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद मेरे जीवन प्राण हैं, उनके चरणार विंद के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाएं गान करता हूँ। वैष्णवे रे पाए मोर एई मानस काम, मोर प्रभु नित्यानंद हाउ बले राम, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तजु पदे जुगे गान। ऐसी अद्भुत लीलाएं नवदीप में नित्यानंद और विश्वंभर देव मिलकर करते हैं। नित्यानंद अलौकिक प्रेम पूर्वक निरंतर बालकों की भांति चेष्टा करते रहते हैं, मिलने पर सबसे प्रेम पूर्वक मधुर बोलते हैं और अपने आप ही नाचने गाने और हंसने लगते हैं, अपने अनुभव में हुंकार करने लगते हैं, जिसे सुनकर सब लोगों को बड़ा अद्भुत लगता है। वर्षा काल में गंगा की तरंगों में मगरमच्छ होते हैं, परंतु नित्यानंद उन तरंगों में बहते फिरते हैं। मगरमच्छों की चिंता नहीं है, वो तरंगों में बहते फिरते हैं, तिल भर भी भय नहीं करते। सब लोग उनको देखकर हाय हाय करते हैं, फिर भी नित्यानंद हंसते हुए तैरते फिरते हैं। बरसात में गंगा जी में तो बहुत पानी हो जाता है, गंगा जी में तैरते हैं। प्रभु तो शेष नाग के भाव में बहते हैं, शेष जी है ना, शेष नाग के भाव में बहते हैं, परंतु इसे समझे बिना सब लोग हाय हाय मचाते हैं। किसी समय आप मूर्छित हो जाते हैं तो तीन चार दिन तक चेत नहीं रहता, क्या समझे। प्रेम की मूर्छा जब आती है तो कितने दिन, तीन चार दिन तक। इस प्रकार इनके और भी अनेक अचिंत चरित्र हैं, अनंत मुखों से भी इनका वर्णन नहीं हो सकता है। हे मत आर कत अचिंत कथन, अनंत मुखे ओ नारिकारी ते वर्णन। एक दिन जहां प्रभु गौरचंद्र बैठे हुए थे, नित्यानंद उनके पास आ गए। बाल्य भाव में आपका शरीर पूरा नग्न है और मुख पर हंसी है और नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। बारंबार ये कहकर हुंकार कर रहे हैं कि नदियां के निमाए पंडित मेरे प्रभु हैं। केवल एक ही बात बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? नदियां के निमाए पंडित मेरे प्रभु हैं। और वस्त्र नहीं है शरीर में। श्री गौर प्रभु उनकी नग्न मूर्ति को देखकर हंस पड़े। उनकी देह ज्योतिर्मय थी, देखने में बहुत सुंदर। प्रभु ने झटपट अपने मस्तक का वस्त्र उनको पहना दिया। प्रभु ने तुरंत अपने मस्तक का वस्त्र उतारा, उनको पहना दिया। फिर भी वे हंस रहे हैं। वो हंसते जा रहे हैं, नितरन हंसते जा रहे हैं। प्रभु ने स्वयं उनके शरीर पर दिव्य गंध चंदन का लेप किया और फिर उनके शरीर को मालाओं से सजा दिया। उन्हें बैठने के लिए अपने सामने एक आसन दिया। श्री गौरचंद्र उनकी स्तुति करने लगे और भक्तजन सुनने लगे। नाम से आप नित्यानंद हैं और रूप से भी आप नित्यानंद हैं। आप मूर्तिमान बलराम हैं। आपका शरीर भी नित्य आनंद घन है। नित्य आनंद ही आपका भ्रमण है, भोजन है, सब व्यवहार है। नित्यानंद के बिना आपका कुछ भी नहीं है। आपको समझने की शक्ति मनुष्य में कहाँ है? कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। ये परम सत्य है कि जहां आप हैं वहीं पर श्री कृष्ण है। श्री चैतन्य प्रेम रस में निमग्न है, नित्यानंद प्रभु। अतः श्री गौर जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, वो सब नित्यानंद प्रभु को सम्मत होता है। तुम्हारे बोझे तय सकते मनुष्य रे कोथा, परम सो सत्य तुम जथा कृष्ण तथा। चैतन्य रह रसे नित्यानंद महामति, जे बोले न जे करे न सर्वत्र सम्मति। फिर प्रभु बोले, आप अपनी एक कॉपी दें, ये मेरी बड़ी इच्छा है। क्या बोले? क्या बोले? आप अपनी एक कॉपी दें, ये मेरी बड़ी इच्छा है। ऐसा कहकर प्रभु ने उनकी कॉपी लेकर उसके छोटे छोटे बहुत से टुकड़े कर लिए। और वैष्णवों में प्रत्येक भक्त को स्वयं प्रभु ने वे टुकड़े बांट दिए। श्री गौर बोले, सब लोग अपने अपने सिर पर इन टुकड़ों को बांध लो। औरों की तो बात क्या, योगेश्वर भी इस वस्त्र की बड़ी इच्छा करते हैं। वैसे कॉपिन तो बहुत अशुद्ध होती है ना? कॉपिन तो कमर का कपड़ा होता है, है? तो अशुद्ध होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं कॉपिन लेकर के और उनको जो है टुकड़े करके भक्तों से कहते हैं, अपने सिर में बांधो। योगेश्वर भी इच्छा करते हैं। नित्यानंद की कृपा से ही विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। इनको आप श्री कृष्ण की पूर्ण भक्ति शक्ति मानो। नित्यानंद के बिना श्री कृष्ण का द्वितीय स्थानीय और कोई नहीं है। श्री कृष्ण के बाद जो पहले विस्तार हैं वो कौन है? बलदेव जी, नित्यानंद। श्री कृष्ण के बाद नित्यानंद का ही स्थान है या बलदेव का। संगी भी है, सैया भी है। कृष्ण के संगी भी हैं, सैया भी हैं, भूषण भी हैं, बंधु भाई सब रूपों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद के चरित्र वेदों को भी अगम्य है। ये सब जीवों के पिता हैं, रक्षक हैं, मित्र हैं। इनके व्यवहार और कर्म सब कृष्ण प्रेम रसमय हैं। इनकी सेवा करने से श्री कृष्ण में प्रेम भक्ति होती है। इनकी कॉपीन को भक्ति पूर्वक सिर में बांधो और घर जाकर यत्न पूर्वक इसकी पूजा करो। किसकी पूजा करो? कॉपीन की। प्रभु की आज्ञा पाकर सब भक्तों ने बड़े आदर पूर्वक वे टुकड़े सिर पर बांध लिए। इहाने व्यवहार कर्म कृष्ण रस माए, इहाने से विले कृष्ण भक्ति प्रेम, कृष्ण प्रेम भक्ति हाय। भक्ति करी इहान कॉपी ने बांधे सिरे, महायत्न इह पूजा करेगी या घरे। पाई है प्रभु रे आज्ञा सर्व भक्त गण, परम आधार सिरे करीला बंधन। फिर प्रभु ने कहा, हे भक्तो सुनो, नित्यानंद के चरण जल का पान करो। क्या पान करो? चरणों के जल का पान करो। इनका चरण जल पीने से श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति होती है। प्रभु की आज्ञा पाकर भक्तजन नित्यानंद के चरण धोकर उसको पीने लगे। एक एक भक्त पांच पांच और दस दस बार उसे पीने लगा। नित्यानंद को बाहरी ज्ञान नहीं था, वे निरंतर हंसते जा रहे हैं। उनके पैर को जो है धो करके लोग पी रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो हंसते जा रहे हैं। नित्यानंद हंसते जा रहे हैं। महाप्रभु गौरांग स्वयं बैठकर आनंद पूर्वक नित्यानंद का चरण जल लुटा रहे थे। पियो पियो ये पियो। सब भक्तगण उस चरण जल को पीकर उन्मत्त की भांति हरि बोल पुकारने लगे। कोई कहता कि आज जीवन धन्य हो गया, कोई कहता कि आज समस्त बंधन नष्ट हो गए, कोई कहता कि आज मैं कृष्णदास बन गया, कोई कहता कि आज का दिन मेरा धन्य है, कोई कहता कि ये चरण जल तो बहुत स्वादिष्ट है, अभी तक मुंह का मिठास दूर नहीं हुआ है। चरण जल जो है इतना स्वादिष्ट है कि मुंह का मिठास अभी भी दूर नहीं हुआ। नित्यानंद के चरण जल का कैसा प्रभाव कि पीने मात्र से सब चंचल हो गए। पागल के पैरों का जल पियो तो पागल, तो वही पागल हो गए। फिर तो कोई नाचने लगा, कोई गाने लगा, कोई जमीन पर लोटपोट होने लगा, कोई बारंबार हुंकार और गर्जना करने लगा। इस प्रकार परम आनंदमय श्री कृष्ण संकीर्तन होने लगा और भक्तजन बेहबल होकर नाचने लगे। थोड़ी देर में गौरचंद्र भी हुंकार करते हुए उठ खड़े हुए और अपार नृत्य करने लगे। तुरंत ही नित्यानंद भी उठ खड़े हुए और भक्तों के बीच दोनों प्रभु नृत्य करने लगे। कोई किसी के ऊपर गिर पड़ता है तो कोई किसी को पकड़ता है, कोई किसी की चरण धूली सिर पर चढ़ाता है, कोई किसी के गले लगकर रोता है, कोई कुछ कर रहा है, उस सब का वर्णन नहीं किया जा सकता। निताई गौर से भी किसी को कोई भय नहीं है। हालांकि स्वामी हैं, सब दास हैं, लेकिन अभी कुछ भय नहीं है, उनसे भी कोई भय नहीं। प्रभु और दास सब एकत्र नृत्य कर रहे हैं। दो प्रभु हैं, बाकी सब दास हैं, लेकिन एकत्र नृत्य कर रहे हैं। नित्यानंद और चैतन्य चंद्र परस्पर आलिंगन किए नाच रहे हैं। दोनों महाकौतुकी हैं। नित्यानंद के चरणों की पटक से पृथ्वी कंपायमान हो रही है। ये देखकर भक्तगण हरि बोल ध्वनि करने लगे। प्रेम रस में मत होकर वैकुंठ के ईश्वर सब प्रेमी सेवकों को लेकर नृत्य कर रहे हैं। कार गाय केवा पड़े केवा कार धरे केवा कार चराणे रधोली लय शेरे केवा कार गला धारे काराए क्रंदन केवा कौन रूप करे ना जाए वर्णन प्रभु करे आओ कारो के छुभय नाई प्रभु भृत्य सकल ना चाहे एक ठाई नित्यानंद चैतन्य कार्य कोला कोली आनंद नाचे न दुई महा कुतूहली पृथ्वी कंपिता नित्यानंद पद तले देखिया आनंद सर गण हरि बोले प्रेम रस मत हई वैकुंठ ईश्वर नाचे ने लाई ऐसा में प्रेम अनुचर। इन सब लीलाओं की समाप्ति नहीं है। सुनाई पड़ रहा है सबको सुनाई पड़ रहा है। इन सब लीलाओं की कभी समाप्ति नहीं है। इस प्रकार सारा दिन नृत्य करके प्रभु गौर हरि सब भक्तों के साथ बैठ गए। प्रभु गौरांग अपने हाथों से तीन तालियां देकर सब लोगों के प्रति सत्य वचन बोले। महाप्रभु ने तीन बार ताली बजाई और फिर सब भक्तों से सत्य वचन बोले। इन नित्यानंद की जो कोई श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है वो मेरी ही करता है। इनके श्री चरण ब्रह्मा और शिव द्वारा भी वंदित हैं, अतएव इनसे सब प्रेम करिए। इनसे तिल भर भी जो द्वेष करता है वो भक्त होने पर भी मेरा प्यारा नहीं है। इनकी अंग वायु जिसके शरीर का स्पर्श करेगी उसे भी श्री कृष्ण नहीं छोड़ेंगे। इनके शरीर की हवा भी किसी को लग जाए तो कृष्ण उसको भी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु के वचनों को सुनकर सब भक्तों ने तत्क्षण महा जय जय ध्वनि की। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इन सब चरित्रों को सुनते हैं, सुन रहे आप लोग, जो लोग भक्ति पूर्वक इन सब चरित्रों को सुनते हैं उनके स्वामी श्री गौरचंद्र भगवान होते हैं।
हरि बोल
हरि बोल हरि बोल। नित्यानंद के इन सब चरित्रों को जिन्होंने देखा वे भली भांति उन्हें जानते हैं। नित्यानंद के प्रभावशाली असंख्य चरित्र हैं, उन्हें श्री चैतन्य के प्रिय महाभाग्यवान ही जानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र मेरे जीवन प्राण हैं, उनके चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाएं गान करता हूँ। सुन या प्रभु रे वाक्य सर्व भक्त गण, माँ जय जय ध्वनि करी लता खन। भक्तिकारी भक्तिकारी जी सुनाए ये सब आख्यान, तारे स्वामी है गौर चंद्र भगवान। नित्यानंद स्वरूप रे ये सकल कथा, जे देखी ले तहारे से जाने सर्वथा। हे मत कत नित्यानंद रे प्रभाव, जाने जत चैतन्य रे प्रिय महाभाग। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तजपद जुगे गान। तो इस तरह से हमने कुछ सुना है, क्योंकि गौर पूर्णिमा बहुत निकट है, तो इसलिए हमने उनके चरित्र में से कुछ लीलाएं आपको पढ़ के सुनाई है ना, बहुत सुंदर लीलाएं। ठीक है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ
बताया
ना कि प्रभु की हवा भी लग जाए। हाँ, नित्यानंद के शरीर की हवा भी किसी को लग जाए तो श्री कृष्ण से कदापि नहीं छोड़ेंगे ना ये। तो मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी,
है?
हाँ। किसकी? नित्यानंद प्रभु की। मैंने बताया कितनी उम्र थी, 32 साल।
मतलब इसको अभी किस तरह से समझेंगे, अभी हवा कैसे लगेगी कथा के माध्यम से?
इनका प्रश्न है कि हम कथा के माध्यम से कैसे समझें कि हवा लगेगी उनकी, हवा जो कानों में जाए, उनका जो चरित्र है आप कानों से सुनते हैं है ना, तो वो भी हवा लगने की तरह है। ठीक है ना, ये जो ध्वनि है ये वायु के माध्यम से पहुंचती है, हवा के माध्यम से पहुंचती है ना, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी,
आपने भी शुरुआत में बताया था कि जो नित्यानंद प्रभु से द्वेष करता गंगा जी भी उससे दूर हो जाता।
हाँ,
तो उसका मीनिंग क्या है?
हाँ, इसका अर्थ ये है कि नित्यानंद प्रभु से अगर जो कोई द्वेष करता है, अगर वो गंगा में स्नान भी करे तो भी गंगा उसको पवित्र नहीं करेंगी। वो हजारों बार भी गंगा में स्नान करे तो गंगा जी पवित्र नहीं करेंगी। तो गंगा में स्नान करने पर भी वो गंगा से दूर ही है। इनका प्रश्न अच्छा प्रश्न है। त्रेता युग में लक्ष्मण जी कपड़े पहनते थे और द्वापर युग में बलदेव जी भी कपड़ा पहनते थे, तो ये कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्या उत्तर है? बाल्य भाव में, ये बाल्य भाव में है। और बाल्य भाव क्यों है? प्रेम के कारण, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के कारण। हाँ, एक ये पागलपन होता है, ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम है ये उन्होंने ना तो त्रेता युग में प्रकट किया ना द्वापर युग में प्रकट किया। कलयुग के इन पतितों के ऊपर जो है इनकी विशेष कृपा है, कलयुग के पतितों के ऊपर इनकी विशेष कृपा है कि जो प्रेम ना तो त्रेता युग में प्रकट किया ना द्वापर युग में प्रकट किया, वो प्रेम जो है कलयुग के पतितों को दिया है ना। तो कोई धनी व्यक्ति होता है तो उसकी अपनी इच्छा होती है वो धन कहाँ लुटाए, वो जिसको देना चाहिए उसको नहीं देता और जिसको नहीं देना चाहिए उसको देता है, उसकी इच्छा है ना। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा है ना, जो बिल्कुल पतित हैं पापी हैं उनको भी देते हैं प्रेम। है ना, तो इनकी कृपा है ना। तो ये जो अवतार है ये महावदान्य अवतार, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा, जब तक चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं थी तो नित्यानंद प्रभु जो है आए नहीं, नवद्वीप में नहीं आए। 20 साल तक भ्रमण करते रहे तीर्थों में और फिर मथुरा में निवास करने लगे। लेकिन जब उनको पता चल गया कि अब इन्होंने शुरू कर दिया है कीर्तन, कीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया है, तब जो है इन्होंने भगवान की आज्ञा समझ करके फिर ये आए और प्रेम लुटाया। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से प्रेम लुटाया, ठीक है ना। धन्यवाद। अच्छा,
आपने जैसे बताया कि बिना नित्यानंद के, महाप्रभु कह रहे हैं कि बिना नित्यानंद की कृपा के कृष्ण के चरण रख नहीं मिलेंगे, तो भाई कन्फ्यूजन आया कि हमें चैतन्य महाप्रभु को जाना चाहिए या नित्यानंद प्रभु की कृपा।
हाँ, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना, इसका मतलब ये है कि अगर हम नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, नित्यानंद प्रभु को ना मान करके अगर हम चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं तो वो जो है स्वीकार नहीं होगा। नहीं तो वैसे कोई नित्यानंद प्रभु को नहीं जानता है, चैतन्य महाप्रभु को मानता है तो अलग बात है, लेकिन जो जानता है और फिर भी अगर नहीं मानता तो फिर चैतन्य महाप्रभु उसका समर्पण, उसकी भक्ति, उसकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। धन्यवाद। श्री चैतन्य नित्यानंद कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।
तो जोरदार करता हूँ धनी से इस ग्रेस, गीता मित्र प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे और सभी के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिजग्रेस जीतामित्र प्रभु जी की, जीतामित्र प्रभु गौर कथा कर रहे हैं ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में 27 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक 5 दिन की कथा रहेगी, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर का जो ऑडिटोरियम है वहां पर ये कथा रहेगी और सभी भक्तों के लिए फिर कथा के बाद प्रसादम की व्यवस्था भी रहेगी। हरे कृष्णा। तो आप भक्तगण ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर जा सकते हैं कथा श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। इसलिए जीता मित्र प्रभु की
यहाँ रिक्वेस्ट करो।